राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर 1992 प्रातः लगभग 9 बजे वाराणसी में हुआ। राम।
पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण।
नौवें अध्याय के चौथे और पांचवें श्लोकों में भगवान ने वर्णन किया है मैं सब में परिपूर्ण व्याप्त हूँ और सब संसार मेरे में है और मैं संसार में नहीं हूँ और मेरे में संसार नहीं है। ये चार बातें की उस से इसका क्या मतलब है? जैसे आकाश अगर कहे तो मैं सब बदलों में हूँ और सभी बदल मेरे में है और मैं बदलों में नहीं हूँ, बदल मेरे में नहीं है। कैसे? बदल आकाश में हो तो आकाश में हरदम बदल रहने चाहिए और आकाश बदल में ही रहे तो बदलों को मिटने पर आकाश मिट जाना चाहिए। तो आकाश सब में रहता है, सब आकाश में ही रहते हैं बदल, परंतु आकाश बदलों के अंतर्गत नहीं है और बदल भी आकाश में हरदम नहीं रहते हैं। ऐसे ही संसार परमात्मा में है और परमात्मा सब संसार में है, पर संसार हरदम नहीं रहता है, परमात्मा हरदम रहते हैं। तो परमात्मा में जब संसार रहता है तो परमात्मा सब में व्यापक है, सब परमात्मा में ही रहते हैं, परंतु संसार मिट जाता है तो संसार में परमात्मा हो तो मिट जाए, मिटे नहीं निर्लेप रहते हैं और परमात्मा में संसार रहते ही नहीं तो बदल आकाश में रहते ही नहीं, आते जाते रहते हैं। ऐसे परमात्मा में संसार आगंतुक है, ये तात्पर्य। इसी व्याख्या कई तरह से की जा सकती है, पर सीधा सीधा अर्थ है आकाश में परमात्मा, बादलों में आकाश है, आकाश में बदल है। जब बदल और आकाश दोनों तो दोनों बातें ठीक है, परंतु आकाश में बदल नहीं है, बदल भी आकाश में नहीं है, क्योंकि बदल आगंतुक वो आने और जाने वाले आकाश रहने वाला है। ऐसे संसार में मेरे, संसार में मेरे, संसार मेरे में आता जाता रहता है, मैं रहता हूँ, आकाश बदल हरदम मेरे में नहीं रहते, ये साथ में है। मानो आकाश में बदल उत्पन्न और नष्ट होने वाले, आकाश निरंतर रहने वाला, ऐसे संसार परमात्मा में उत्पन्न और नष्ट होने वाला और परमात्मा सब हरदम रहते, ये तात्पर्य है। कोई पूछता है कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे जप करते हैं तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा करने कोई दोष तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये संत हुए महापुरुष, चैतन्य महाप्रभु हुए, उन्होंने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा प्रचार किया। मूल में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 ऐसा है। तो ऐसा क्यों किया? इस वास्ते किया कि वेद के मंत्रों का आन पूर्वक ठीक उच्चारण करने का हरे को अधिकार नहीं है। जब इसको उल्टा से कर दिया, अब कोई जपे तो ये संतों की कृपा है, चैतन्य महाप्रभु की बड़ी मेहरबानी है। उन्होंने कह दिया तुम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे जपो। तो ये संतों की कृपा, इस वास्ते उन्होंने ऐसा प्रचार किया कि जिसमें अधिकार अनधिकार की कोई बात नहीं, मंत्र को उल्ट दिया, अब जपो सही। महात्म कोई कम नहीं, किंचित मात्र भी कम नहीं है, सबको अधिकार देने के लिए किया। ऐसे भाई बहन किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी देश का, किसी देश में कोई ऊंचा नहीं, कैसे ही ज्ञान हो, सबके सब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसे जब कर सकते हैं, बिल्कुल खुली बात है। ये संतों की कृपा है, इस बात की कोई दोष की बात नहीं है, इनमें शंका बिल्कुल न रखें। अब कहते हैं गीता जी की बात कहो, तो मैंने गीता जी की बात कल परसों कही थी, गीता किस वजह से क्या कहा है, गीता का विवेचन किया था। फिर भी आ जाए तो गीता तो मेरी बहुत प्रिय वस्तु है, उसके कहने में मेरे को तृप्ति नहीं होती है। सुनने सुनाने में कोई सुनाने वाला हो तो सुनने की रुचि रहती है, और सुनने वाले हो तो सुनाने की रुचि रहती है। गीता पर मैंने लिखवाया भी है, गीता की साधक संजीवनी टीका लिखी भी है, कि लोगों ने उसको पसंद की है। कोई सब टीका सब पसंद नहीं करते, किसी को किसी की टीका अच्छी लगती है, किसी को किसी की लगती है। तो कोई भी आपको अच्छी लगे, जो संत महात्माओं ने की है, बड़े बड़े आचार्यों ने, मेरी तो कोई ऐसी ऊंची बात नहीं है, पर संतों ने की किसी टीका को पढ़ो आप, जैसे शंकराचार्य है, वल्लभाचार्य है, रामानुजाचार्य है, बड़े बड़े आचार्य हुए संप्रदायों के, उन महापुरुषों ने जो लिखा है उसके अनुसार आप चलो। और भी बहुत सी टीका मधुसूदनी है, धीरे धीरे नीलकंठी है, ये बड़ी व्याकरण की विषय को बहुत विशेष खोलते हैं, ऐसी विद्युतपूर्ण लेख है, वो लिखे लेख है, और साधारण टीका है। जितनी दुनिया में भाषा है उनकी बहुत भाषाओं में गीता की टीका हुई है, उनका अनुवाद तो बाइबल पर भी बहुत हुए हैं, बहुत ज्यादा, परंतु टीका नहीं हुई है। अनुवाद जैसा गीता में, उसका अनुवाद दूसरी भाषा में कर दिया, परंतु गीता के गहरे विषय को खोलने के लिए विद्वानों ने जितनी चेष्टा की है, प्रयत्न किया है और कर रहे हैं, करते रहेंगे, फिर भी अंत नहीं आएगा भावों का। गीता ऐसी विलक्षण वस्तु है, अलौकिक है, साक्षात भगवान की वाणी है, या स्वयं पद्माना अवश्य मुख पद्मादि से सा। इस वास्ते गीता की बात तो अलौकिक महिमा है। इसी उद्देश्य को लेकर यहाँ 5 श्लोकों का पाठ करते रोजाना क्यों करते हैं, कि ये कम से कम 5 श्लोक तो याद हो जाए सबकी। एक श्लोक रोजाना पढ़े तो उसका भी महात्म्य है, 2 श्लोक पढ़े तो महात्म्य है। तो अपने विचार हुआ कि 5 श्लोकों का रोजाना पाठ करें तो आप साफ कंठ हो जाएगा, और गीता के श्लोक मात्र कर पढ़ने का बड़ा भारी महत्व है। गीता पाठ समय युक्त हो एक प्रधान अध्यापक से एक जगह कोई एक बात मेरे से पूछी थी, बहुत वर्षों की बात है, कोई 50 वर्ष से ऊपर हुए, 2000 से 15-20 वर्ष पहले की, कितने वर्ष हो गए, 50 वर्ष को 2000 को हो गए 49। तो उस समय पूछा है हेडमास्टर ने कि मनुष्य को अपना उद्योग कम से कम कम से कम कम से कितना कर लेना चाहिए। तुम्हें अगर गीता पाठ करते रहना चाहिए तो क्या कितना करना चाहिए, वो इतना करना चाहिए पीछा मनुष्य जन्म हो जाए, इससे नीचे न गिरे, कितना तो कर ही लेना चाहिए। पीछे मनुष्य जन्म हो जाए की उपाय वो गीता पाठ करना, गीता पाठ समाज तो मृदो मानुष साम्रदे गीता व्यासम पूरा कर लब से मुक्ति मुतम। तो गीता का पाठ करता रहेगा तो पीछे मनुष्य से नीचा नहीं जाएगा, तो इतना काम कर ही रहना चाहिए। तो इसी भाव को लेकर रोजाना ये 5 लोगों को पाठ करते हैं, ये 5 लोग याद हो जाए, चलते फिरते ऊँचे बैठते एक बार दो बार 5 बार 10 बार गीता के 5 लोगों का पाठ करे कम से कम और संपूर्ण करे, कहना ही क्या, ये तो बहुत ही बढ़िया है। इस तरह से गीता याद भी कराई जाती है, क्यों को याद है गीता जी, कभी मौका देगा तो आपको सुनाएंगे। हमारे कई भाई ऐसे है सज्जन जिन लोगों ने गीता कंठस्थ कर रखी है, छोटे भाई भी है, बड़ी अवस्था वाले भी है, बहुत से जिससे कोई कहीं से पूछे भी गीता जानते हैं, याद करते हैं, अर्थों का भी मनन करते हैं, बहुत अच्छी गीता में अभ्यास लोग करने वाले हैं। तो गीता का अभ्यास करना चाहिए। एक सज्जन कहते हैं गीता की बातें हमारे को सुना, गीता की सुनाते हैं तो अच्छी लगती है, तो मेरे को भी अच्छी लगती है गीता जी की बातें, तो अपने मौके मौके सुनाते ही है। अब एक बात और पूछी, वो बात कहता हूँ, वे कहते हैं कि आपने पहले सुधानगढ़ में सुनाया था वो विषय सुना, वो विषय भी सुनाता हूँ, आप ध्यान देकर सुने। हमारे पास एक बढ़िया पूंजी हमने मान रखी है धन को, पैसे को बहुत ज्यादा आदर दे रखा है। भागवत के 12वें स्कंद के 30 अध्याय में कह शायद हूँ कलयुग में पैसे की महिमा होगी, मुख्यतः पैसे की होगी, ऐसी बात है। आप एक जगह सप्ताह कर रहे थे तो मैं अचानक गया तो उससे वही प्रश्न कर रहा था कि कलयुग में पैसे की मुख्यता रहेगी, बस पैसा जिनके पास में वो श्रेष्ठ माना जाएगा, उत्तम माना जाएगा, पैसे की मुख्यता रहेगी। तो आजकल ये देखते हैं पैसा जिसके पास में होता है वो ही ठीक है, टका धर्म टका कर्म टका ही परम पदम, जैसे कि टका नास्ती है टका टक टका ऐसी पास। तो पैसे को धन मान रखा है। अब मेरी बात सुने आप, आपके पास पैसों से बहुत बड़ा भारी धन आपके पास है, पर उस तरफ आपने ध्यान नहीं दिया है। बहुत बड़ा धन वो क्या है कि पैसे की महिमा क्यों है कि पैसे से हर एक चीज खरीद सकते हैं, हम चाहे सो वस्तु ले सकते हैं, इस वास्ते पैसे की महिमा है। परंतु आपके पास धन है उससे आप परमात्मा को खरीद सकते हैं, पैसे से परमात्मा खरीदने नहीं होते, वो धन आपके पास है। पैसा तो सबके पास में नहीं है, मैं कहता हूँ वो धन सबके पास है, कम ज्यादा तो है पर है सबके पास, वो धन सबके पास, कोई उस धन से जीता नहीं है। धन तो किसी के पास नर किसी पास नहीं है, बिल्कुल नहीं है, किसी पर कर्जा है, परंतु असली धन है वो सबके पास है। बहुत बढ़िया धन है, बहुत ऊंचा धन है। वो क्या धन है? वो है मानव जीवन का समय, जिसके बल पर हम जी रहे हैं। वो हमारी उम्र, हमारे स्वास्थ्य, हमारे जीने का समय, आयु, वो सबसे ऊंची है। इतने बिल्कुल मूर्खता से करे तो 15-20-25-30-40-50 रुपये रोजाना खेती में काम करने वालों को देते हैं। अभी मथानी में बात सुनी कि 40-50-50 रुपया रोजाना हम देते हैं, आदमी नहीं मिलता। आदमियों का तो नाश कर दिया ना इस नसबंदी ने, ऑपरेशन ने, गर्भ गिराने ने, हिंदुओं का नाश कर दिया। अब आदमी मिले कहाँ से? वो नष्ट कर दिए। कोई 40-50 करोड़ नाश हुआ है, फिर कर रहे हैं जोर से, नाश ही कर रहे हैं। आदमी मिलते नहीं है, और आदमी मिलते वो काम नहीं करते हैं, और काम का प्रतिबंध भी लगाते हैं कि इतने ज्यादा का काम मत करो, करो तो दंड दिया जाएगा। ये खास दरिद्रता की जड़ है, मूल है। काम तो खाओ पियो जैसा में करो, बढ़िया बढ़िया सजावट करो, ये तो करो, और काम धंधा ज्यादा मत करो। दुकान भी ज्यादा खुल गया तो दंड दिया जाएगा। तो काम कम करेंगे, खर्चा ज्यादा करेंगे, तो सिवाय दरिद्रता का और क्या होगा? हमने सुना है कि हिंदुस्तान पर इतना कर्जा हो गया है कि इसकी बिक्री हो जाए तो भी इसका कर्जा पूरा नहीं होगा, इतना कर्जा हो गया है। कहां तक सत्य आप लोग जानो, मैंने सुना है। आप लोग समझदार हो, पढ़ने पढ़ने वाले, जानने वाले हो, इतना कर्जा हो गया तो ये वास्तव में बेकारी नहीं है। काम करते नहीं, किसी क्षेत्र में आकर देखो वो ठीक नहीं काम करते। आप क्षमा करेंगे, संतों से क्षमा मांग लेता हूँ। पहले जो हम साधु और ब्राह्मण है वो अपना काम ठीक कर रहे हैं, नहीं करते। साधु बनकर परमात्मा तत्व की खोज करे निरंतर, ऐसे साधु कम मिलेंगे। ब्राह्मणों में ब्राह्मणोचित काम करते हुए परमात्मा तत्व को प्राप्त करें, ऐसे तत्पर रहने वाले ब्राह्मण कम मिलेंगे। क्षत्रियों में देखा जाए तो भी अपने धर्म का पालन करके ठीक तरह तत्परता से अपने कर्तव्य में लगे रहे, कम मिलेंगे। वैश्य भाई धन कमाने में तो लगे हुए हैं, परंतु वैश्य के लिए जो खास कर्तव्य कर्म है, जो संध्या वंदन आदि द्विजाति कहलाते हैं, ब्राह्मण भी क्षत्रिय वैश्य भी दोनों द्विजाति हैं, इनको सबको वेदों का अधिकार है, संध्या गायत्री का अधिकार है, पर इनमें संध्या करने वाले कितने हैं? ब्राह्मणों में अलबत्ता है, पर उनमें भी मैंने देखा है गायत्री तक नहीं, जनहूतल में योगोपहूत में, और वो योगोप पहन लेते हैं तो संध्या गायत्री नहीं। ब्राह्मणों अब किसको कहें बताओ? जब सबसे ऊंचे श्रेष्ठ है उनमें नहीं तो औरों को क्या कहें? ऐसे क्षत्रियों में भी ब्राह्मणों की अपेक्षा भी देने को बहुत कम। ब्राह्मणों फिर योगित मिलेगी, जितनी ब्राह्मण समुदाय में योगित मिलेगी इतनी क्षत्रिय समुदाय में नहीं मिलेगी, वैश्य समुदाय में भी नहीं मिलेगी। ये श्री जयदयाल जी हुए हैं, इन्होंने वैश्य जाति में बहुत काम किया, बहुत काम किया। उनका नियम था संध्या नहीं हो तो भोजन नहीं करेंगे, सुबह सूर्योदय से पहले या शाम को सूर्यास्त से पहले, उत्तम सूर्य सही था, उत्तम तारकों पे था, सुबह सूर्योदय से पहले उत्तम संध्या करते थे, और नहीं हो जाए तो बोल करेंगे। तो उन्होंने बहुत प्रचार किया, संध्या का प्रचार किया, गीता का प्रचार किया, वही विष्णुदेव का प्रचार किया, युगों से रहने का करने की ये प्रचार किया, विद्यालय खोले पढ़ाने का, संस्कृत पढ़ाने का प्रबंध किया, बहुत किया। उनके करने से बहुत कुछ जागृति हुई है। आप देखो तो इतनी पुस्तकों की इतनी सस्ती कोई संस्था नहीं देती, तो उनका उद्योग हुआ बड़ा सराहनीय, बड़ा ही प्रशंसनीय हुआ। और गीता के बहुत गहरे भावों को समझते थे। उन्होंने विशेषता से बताया कि ज्ञान योग, कर्म भक्ति योग, ज्ञान योग तीनों और कर्म योग, ये तीनों ही परमात्मा की प्राप्ति के स्वतंत्र साधन है। ये विशेषता से उन्होंने कहा। और टीकाकार ने भी कहा है, परंतु ज्ञान प्रधान बहुत सी मिलेगी और कई टीका भक्ति प्रधान मिलेगी, और कर्म प्रधान की तो एक तिलक महाराज ने कर्मयोग रहस्य लिखा है, परंतु कैसे गहरा कर्मयोग वो गोविंद का नहीं लिखा। तिलक महाराज ने कर्मयोग लिखा है वो सिद्ध पुरुषों का लिखा है। तत्व ज्ञान हो जाए, जन्म जब सीख जीवन मुक्त हो जाए, उनका कर्मयोग होता है। और कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग ये साधन है। भागवत एकादश कर्म के 20वें अध्याय में योगास्त्रयो मया प्रयुक्ता निराम श्रेय विजित से कल्याण करने के लिए तीन बताए योग, तो कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग है। तीनों स्वतंत्रता से कल्याण करने वाले हैं। इनमें संप्रदाय भेद है। पूज्य आचार्य जी शंकराचार्य महाराज कर्मयोग को पहले, उसके बाद भक्ति योग, उसके बाद में ज्ञान योग, ज्ञान योग से तत्व ज्ञान मुक्ति हो जाए, ये लिखा है। रामानुजाचार्य महाराज ने पहले कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग, ऐसे लिखा है। तो आचरण लिखा बड़ा अच्छा है, सब आदरणीय है। उसके संप्रदाय के अनुसार अगर चले उन आचार्यों के कहने में तो कल्याण हो जाए, इसमें मेरे संदेह नहीं होता। और स्वतंत्र कर्मयोग, स्वतंत्र कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये भी ठीक है। आप किसी में लग जाओ तत्परता से, लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। आपको जो ठीक रुचे, ज्ञान योग करो, कर्म योग करो, भक्ति योग करो, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और तीनों स्वतंत्र मार्ग, कर्म योग से केवल कल्याण हो जाए, केवल भक्ति योग से कल्याण हो जाए, केवल ज्ञान योग से कल्याण हो जाए। गीता में भी ऐसा आता है, भागवत के 20वें अध्याय का, जिसके 20वें अध्याय में इनका वर्णन किया है, ठीक तरह से मैंने पढ़ा है। इतनी विशेष करके टीका ऐसी बढ़िया मैंने नहीं देखी है, परंतु उसमें मूल में वर्णन है, कर्म योग करके भक्ति योग कर लो, कर्म योग करके ज्ञान योग कर लो, और कर्म योग स्वतंत्रता से कर लो, ऐसे तीनों बातें बताई अच्छी तरह से। 20वां अध्याय एकादश कंध का आप पढ़ो, बहुत बढ़िया लिखा है। तो कोई सा ही योग वो कल्याण कर देगा। सबसे बढ़िया हमें भगवत गीता देखती है, इसमें बहुत विलक्षण बात है। गीता के पढ़ने से इतनी विलक्षणता आती है मनुष्य में, मैं कह नहीं सकता। जिस विषय का गीता में वर्णन नहीं है, उस विषय में भी गीता के जानने वाला ठीक सम्मति दे देगा, उसकी बुद्धि काम करेगी। जैसे ब्याह का वर्णन नहीं है, पर ब्याह में भी पूछा जाए गीता के अनुसार करे तो ब्याह भी बहुत बढ़िया होगा। ऐसे कोई व्यापार करे, किसी को लक्ष्य वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभाव जम वैश्य के तीन कर्म लिखे है, उसमें वाणिज्य लिखा है, परंतु विस्तार से उसमें नहीं लिखा है। पर गीता पढ़ करके व्यापार करे तो व्यापार भी बहुत बढ़िया हो सकता है, बहुत श्रेष्ठ गीता में। ऐसे साधुओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए, सबके लिए गीता में विशेष करके, और ब्राह्मणों सन्यासियों की बातें आई है पर बहुत कम आई है। गीता मूल का विचार किया जाए तो कम आई है, परंतु कल्याण करने में कमी बात नहीं है। कोई किसी का अनुष्ठान करे, उद्धार हो जाएगा, बिल्कुल जिसमें कोई संदेह की बात नहीं है, ऐसी बात गीता में लिखी है। तो गीता के अनुसार अपना जीवन बन जाए बहुत बढ़िया। तो वो जीवन कैसे बने, इसमें समय लगाया जाए। कोई भी काम किया जाएगा तो समय लगने से होगा। समय लगाने से एक आदमी के 20-50 परिवार के आदमी हो जाते हैं, समय पा करके। मनुष्य भी इतने हो जाते हैं, ऐसे समय पा करके धनी हो जाते हैं, समय पा करके संसार में नाम ले सकते हैं, अपना नाम प्रसिद्ध हो सकता है, समय पा करके स्वर्ग आदि की प्राप्ति कर सकते हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो समय देकर नहीं ले सकते? सबसे कीमती धन मन जीवन का समय है। उस समय को ताश में, चौपड़ में, खेल में, तमाशा में, सिनेमा में, वीडियो देखने में लगा देते हैं, बड़ा बड़े भारी हत्या कर रहे हैं, बड़ा भारी नुकसान कर रहे हैं। अमूल्य समय जो देने से परमात्मा सामने बैठ बंदरी बैठ मास नाच बंदरी, ऐसे भगवान नाच सकते हैं। जिस समय को देने से वो समय ताश तौर में, खेल तमाशों में, इनमें और इसे नीचा हुक्का चिलम तमाकू पीने में, इसे बहुत ही नीचा मदिरापान आदि में समय लगाते हैं। जो महापातक है, चार महापातक है, महापातक मदिरापान खाने पीने में, मदिरापान व्यभिचार में, गुरु पत्नी गमन, चोरी में, सोने की रत्नों की चोरी, ये महापातक है। फिर क्या है? चार महापातक बताया, मानो मदिरापान और गुरु पत्नी गमन और स्वर्ण और सोना की चोरी, ब्रह्मचर्य, ये चार महापथ को बताया शास्त्रों में। बहुत विशेष चार महापथ। यहाँ तक मैंने पढ़ा सुना है कि महापथ करने वाले के साथ 3 वर्ष रह जाए तो जो पाप उसको लगे वो न करने भी उसको पाप लगेगा, इतना उसे संघ का दोष बचाया है। महापात जिसका प्रचार हो रहा है, मजा का प्रचार हो रहा है, मजा पहले ऐसी मेरे बात ऐसे काम पड़ा है, मैं बहुत वर्षों से बोलता हूँ, मेरा काम पड़ा है, ये राजा लोग है, ठाकुर लोग है, गांव के मालिक है, इनके घरों में जाने का। तो एक दिन मैंने कहा भाई मदिरा मान छोड़ो, तुम्हारा एक दिन बोली ये तो सब बामण बने है, बामण बने मामा वेश ब्राह्मण वेश है, इसका अर्थ के मदिरा मांस नहीं है। आज बामणा में वेश में मदिरा, अब किसके घर लोग कहा लोग बताओ, बड़ी विचित्र बात। मैंने बड़े बड़े धनी आदमियों के घराना में ये बात सुनी है, उनके घरों में आकर कूड़े कचरे में अंडों के छिलके मैंने देखे हजरा को, और मदिरा की शीशी वहां देखी है। क्या बताऊं, ये पवित्र महान पवित्र जाति वेश जाति, उस जाति में ऐसे ऐसे कलंक आ गया, महान अच्छा हो गई। क्या बताऊं, पवित्र जाति वेश जाति, उस जाति में ऐसे ऐसे कलंक आ गया, महान अच्छा हो गई। अब चाहते परमात्मा की प्राप्ति, महान घोर नरकों की प्राप्ति होगी, ऐसे महापाप करें, महापाप। हमारा सत्संग करने वाले, हमारे प्रेमी हमारी बात कुछ मानते हैं, वे भी बच्चों को मजा देते। एक घर में काम पड़ा एक आदमी को, कहते इसमें क्या है, थोड़ा सा ध्यान दे, ज्यादा हमें समय छोड़ थोड़ा ध्यान दे मेरे सामने, कहते उसे शर्म ही नहीं, वो तो फिर मेरे से प्रेरणा करते ऐसा ध्यान से, ये दशा हो रही है, क्या करे, किसको कहे। महान पतन की तरफ जा रहे हैं, एक तो ये नशा में और एक ये नसबंदी में ऑपरेशन कराने में महान महान पाप करते हैं, गर्भ रहते गर्भ गिराते गर्भपात करते हैं, कानून बन गया गर्भपात करो, हम जो और हमारे जो मरेंगे वो कम होंगे तो हिंदू नष्ट नहीं हो तो क्या होगा, बताओ समझदार हुआ। और एक तक दिया बोर्ड में देखा एक नहीं तो दो अधिक से अधिक, दो से अधिक बार नहीं हो, कितनी भारी हत्या है। ध्यान देकर आप सुने मेरी बात को, हमारी इस बात का बहुत दुख होता है। एक दो पहले बच्चे होंगे वो आसक्ति से होंगे, स्त्री का पुरुष के, पुरुष के स्त्री की तरफ आकर्षण ज्यादा होता है, वो भोग इच्छा है, उससे बालक होंगे निकृष बालक होंगे, भोगेच्छा पूर्वक आसक्ति पूर्वक जो बच्चा पैदा होगा वो महान व्यचारी होगा। अरे एक और दो ही हो तो व्यचारी हो गए, फिर शांत होती है, विद्या ठीक होती है, धर्म का कुछ अनुष्ठान करता है, सत्संग होता है, सज्जनता आती है, तो फिर तो बच्चे कुछ सपूत हो सकते हैं। पहले तो प्राय ऐसे ही होते, धर्म की दृष्टि वाले जवान लड़का लड़की बहुत कम, जिसमें आजकल की बड़ी नीची दशा हो रही है। छोटी बच्चा अवस्था में तो लड़का लड़की की अलग अलग पढ़ाई, जवान अवस्था में सशिक्षा, लड़का लड़की साथ में शिक्षा करे, किस वर्ण का लड़का किस वर्ण की लड़की, ऐसे कई कई घटनाएं हो गई मेरे सामने, ऐसी बातें आती है। महान वर्ण संकर पैदा हो रहे हैं, कलयुग की बहुत विजित लीला हो रही है। समय आपका लगाते हैं, समय समय, जो समय परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है वो समय रूपी धन किस में जा रहा है, महापातकों में जा रहा है, महान पतन में जा रहा है, बड़ा भारी नुकसान होता है। भाइयों बहनों आप चेत करो, कृपा करो, मेरे पर मेहरबानी करो, और वो मेरे पर करो वो आप पर हो जाएगी, आप पर भी मेहरबानी होगी, आप महान पापों से बचो, भगवान के स्मरण में जप में लगो, काशी आदि क्षेत्र में रहते हो, मुक्त धाम मई जान, ज्ञान खान अघान कर, जहाँ बजे शंभु भगवान, सो काशी से यह कसम, काशी सेवन केवल मुक्ति के लिए होता है, मरने वाला होता है तो वो जाओ भी काशी वास करो, काशी में रहेंगे हम, मरे तो मुक्ति हो जाए, काशी में भी केदार खंड मुक्ति हो जाए, ऐसा खास धाम इसमें रहो तो भगवान का नाम है, पाप मत करो, पाप होगा तो वो भी काशी में जो तीर्थ के पाप, तीर्थ के पाप रावण के सिर कट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं कि कैसे बढ़ रहे हैं, कि जैसे तीर्थ के पाप बढ़े इस तरह से रावण के सिर बढ़ रहे, तीर्थों में बड़ा भयंकर पाप लगता है। जमीन बढ़िया होती है उसमें अनाज के पौधे भी ठीक होते हैं, पर कांटों के पौधे भी बड़े बढ़िया होते हैं, वो जमीन तो सब गोल देती, कैसे ये भूमि है महान पवित्र भूमि, मुक्ति धाम मई जान, काशी कांति अविंद का आदि जो सत्य थे मोक्षदायक मोक्षदायक चुनिया, उनमें रह करके भजन ध्यान करो कितना महत्व होगा। गंगा जी के किनारे भगवान विश्वनाथ महाराज के चरणों में या उनकी छत्र छाया में रहकर भगवान का नाम लिया जाए, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, बड़े भागी है जो कि काशी जी में रहते और भजन करते, पर सावधान रहना चाहिए, तीर्थों में रहने में सावधानी ज्यादा रखनी है, थोड़ा भी पाप होता भयंकर पाप हो जाएगा, इस वास्ते रात दिन भजन भजन में लगे रहो। अपना जो समय मिला है 84 लाख जोड़ी में एक ये मनुष्य शरीर है, जैसे 84 लाख जोड़िया में मनुष्य शरीर दुर्लभ है, 84 लाख के दिवाय भूत प्रेत पिशाच देवता आदि ये सब आगे सब प्राणियों में मनुष्य शरीर मुख्य, और मनुष्य शरीर में भी असली सत्संग बहुत मुख्य। मैंने देखा मेरे काम पड़ा है, मैं बहुत वर्षों से इसमें लगा हुआ हूँ, सत्संग सुनना सुनाना, पढ़ना पढ़ाना, तात्विक बातों पारमार्थिक की बातों में अपना जीवन लगाना। तो बहुत कम आदमी जो ज्ञानी जी से समझने वाले, बहुत कम। इस तत्व को ठीक समझना है, अपना कल्याण करना है, ऐसी बातें बहुत कम। कल एक प्रश्न आया, मेरी बड़ी प्रसन्नता हुई, मैंने विवेचन किया कि तत्व साक्षात कैसे हो, ब्रह्म ज्ञान कैसे हो, कितनी बढ़िया बात। ऐसी बातें कौन पूछता है महाराज, किसके पैदा होती, पर कोई नहीं है। बड़ी बेपरवाह हो रही है, लापरवाही हो रही है, क्या कहा जाओ। सज्जनों, माताओं, बहनों, भाइयों, सज्जनों, विचार करो, परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है। भाई हो चाहे बहन हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंधेज हो, अंधन हो, किसी जाति का, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी देश का, किसी वेश में क्यों न हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, और चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, परमात्मा के सब बहुत प्राप्त हो सकते हैं। परमात्मा की प्राप्ति का सबको अधिकार। इसमें भी अलग अलग बातें बताई है। कई लोग कहते हैं पुरुषों को है, स्त्रियों को नहीं है। कई कहते हैं ब्राह्मणों को, दूसरों को नहीं है। कई कहते हैं सन्यासी को, दूसरों को नहीं है। पर भगवत गीता के अनुसार मात्र मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। गीता में अभिषेक शुद्राचार दुराचारी और पापी और पापी, दुराचारी पापी और ये भी पापी योनि, जो पापी योनि पापों के कारण नीच योनि में गए। पापी योनि के तो पूर्व के पाप है जिसमें नीच योनि में जन्म हुआ, और दुराचारी जो वर्तमान योनि में पाप करते हैं ये, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार ये, और एक स्त्रियां, ये सात आई। इस सातों का अर्थ विवेचन है नौवें अध्याय में। इससे बाहर कोई रह नहीं सकता। ये विश्व पापियों ने, पशु पक्षी गीधार गजेंद्र आदि सब पापियों में आ जाते हैं। कोई ऐसा नहीं जो परमात्मा की प्राप्ति न कर सके, न करे न चले, इधर बात अलग है। परंतु परमात्मा की तरफ से रुकावट किसी वर्ण के, किसी आश्रम के, किसी देश के, किसी देश में कभी नहीं है। इतनी खुली बात कही है गीता जी ने। केवल भगवान भगवत तत्व प्राप्त। उस गीता में दो चार बात बहुत जोर देकर कही है। एक तो भगवान को याद रखना, एक कामना का त्याग करना। संसार की कामना भोग की और संग्रह की, ये इच्छा करने वाले परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। भोग संग्रह करना और भोग भोगना, ऐसा आराम करना और खूब संग्रह करना चीजों का, भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम क्या नाम, ऐसी सार सार भगवत गीता में बातें कही है महाराज। क्या हमारे तो बहुत ही विलक्षण दिख रही है भगवत गीता। भोग और ऐश्वर्य में लगे हैं, संग्रह करने में, सुख भोगने में ये लगे हुए हैं। उनके परमात्मा तत्व की प्राप्ति दूर हुई, प्राप्ति करना है ऐसा निश्चय भी नहीं कर सकते। एक परमात्मा से भी चलना है। भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम तयाप हृदय, वो पुष्पित वाणी जिनने स्वर्ग मिलेगा, वहाँ अमृत का भजन होगा, वहाँ नंदन बन है, बड़ा सुख होगा, ऐसे स्वर्ग मिल गए, स्वर्ग की प्राप्ति में। ऐसों को परमात्मा विषय की निश्चय की परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, ये बुद्धि में नहीं हो सकती। दूसरे अध्याय 31 से 44 चार श्लोकों पर प्रकार है। ये 44वां श्लोक है जो मैं बोल रहा हूँ, दूसरे अध्याय का 44। ये बात है तो रात और दिन इसमें लगना है। भगवान कहते हैं सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच। मनुष्य सब समय मेरा स्मरण कर, युद्ध भी कर। युद्ध भी कर का तात्पर्य अर्जुन के सामने युद्ध था, आप लोगों के सामने संसार का काम है, हमारी बहनों माताओं की रसोई आदि करने का, सबको भोजन कराने का, गृहस्थ का काम करने का, वहाँ जल अन्न आदि के तैयार करने का, झाड़ू रगड़ लेकर के साफ घर करने का, ऐसा काम है वो आप काम करो। और गीता में इतनी विलक्षण बात बताई है, जो परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए एकांत में साधु संन्यासी बन करते हैं, वो आप युद्ध करके प्राप्त कर सकते हैं। अब युद्ध से क्रूर क्रिया क्या होगी, दिन भर मनुष्यों का गला काटना, ऐसी युद्ध क्रिया करो, अर्जुन कहता पाप लगेगा भगवान के नहीं लगेगा। दोनों को मैंने सुनाया है पहले, फिर सुना दू। अर्जुन तो कहता है पाप में वेदस्मान हतीतान आतताई न, इनको मारने से मेरे पाप ही लगेगा, पापम एवासे पाप ही लगेगा। भगवान कहते अतम धर्म संग्राम न करिष्यसि तथा स्वधर्म कीर्तिन्ते हित्वा पाप मुवाप्स्यसि, अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा, अब कीर्ति पाप लगेगा। अब पाप से छूटे कैसे, तो उपाय बताएगा सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ दया जय तो युद्ध आयुष्व नहीं पाप। भाइयों बहनों गीता की बात पूछते हो तो इतनी बढ़िया बात गीता की है, आप हर एक काम जो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार है वो करते हुए राग द्वेष को बचो, आप इससे बचो, राग पूर्वक काम मत करो, द्वेष पूर्वक त्याग मत करो। न द्वेष या कुशल कर्म कुशल नाम सद्धते त्यागी सत्य समावेष्टो मेधावी सन संशया, भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में अकुशल कर्म का त्याग करो। जो कि कर्म काम्य कर्म है, निषिद्ध कर्म है, जो कि मनुष्य का पतन करने वाला है, वे तो त्यागो। ये श्री मधुसूदन आचार्य गीता गूढ़ार्थ दीपिका में लिखते हैं, काम में त्यागात काम निषिद्ध, निष्काम कर्मानुष्ठानम त्यागात काम में निषिद्ध, काम में कर्म और निषिद्ध काम का त्याग करके निष्काम भाव से कर्म स्थान करना, तथापि परमो धर्म जप स्तुत्यादि गुणारे, जप और स्तुति ये परम धर्म है, सब करो भगवान के नाम का जप करो। जिसमें कलयुग में जप की महिमा ज्यादा, चहु युग चहु स्तुति नाम प्रभाव कलि विशेष नहीं आन पाऊ, कलयुग में इस नाम की अधिक महिमा है। नाम नाम अकार बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन ममेदम दुर्दैव नाम राधा। चैतन्य महाप्रभु मंगल में हुए हैं, उन्होंने ये बात कही। नाम नाम अकार बहुधा निज सर्वशक्ति, कलयुग के समय भगवान ने कृपा करके अपनी सब की सब शक्ति नाम में रख दी। नाम से पावे लोग कलो कुतर कीर्तनाथ कलो केशव कीर्तनाथ, कलयुग में नाम में भगवान ने अपनी शक्ति दी। नाम नाम अकार बहुधा निज सर्वशक्ति, अपनी निज शक्ति थी नाम में रहती तत्सरा। और नियमित स्मरण ने काल स्मरण करने के लिए काल नहीं बांधा कि सुबह करो रात में करो दिन में करो अमुक समय करो, हर दम करो सर्वे सुखाल, कोई ऐसा समय बंधा हुआ नहीं, इसमें भगवान का वजन नहीं करना चाहिए, ऐसा यही नहीं है। सर्वे सुखाल सब समय में भगवान को याद, उसका नाम लो, शुद्ध हो अशुद्ध हो। कल संतों में सब में ये आता है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वो द्वापरांते नारद ब्रह्मानंद जगह में ब्रह्मा जी के पास गए कि महाराज कलयुग से कैसे उद्धार हो, यही प्रश्न किया नारद जी ने ब्रह्मा जी से। सहो बात है प्रजापति, बोले कि भगवान नाम, भगवान नाम से कलयुग में भगवान नाम से उद्धार होता है। तो पूछा भगवान नाम कौन सा है महाराज, तो कहा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण जी बताया। महाराज कौन से विधि सहो वाच प्रजापति नास्ति विधि रीति, के महाराज इसकी विधि कौन सी है, किसी विधि है ही नहीं। अब सोचे बैठा तो उठता चलता भगवान के नाम लेते रहो जपते रहो, भगवान का नाम करते रहो राम 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 राम, ऐसे करते रहो हर एक हालत में। एक प्रार्थना करता हूँ आप कभी ये संदेह न करें कि अशुद्ध अवस्था में भगवान का नाम नहीं लेना, ऐसा संस्कार पड़ जाएगा तो मृत्यु में प्राय अशुद्ध अवस्था होती है। क्या स्नान आदि शुद्ध हो सकता है? सब बीमार हो जाएंगे होंगे। तो ये बहम रह जाकर अशुद्ध ऐसे नहीं लेता तो महाराज डूब जाओगे। भगवान नाम लो, मरते समय लो, अशुद्ध हो शुद्ध हो सब लिखा है कृष्ण में। शुद्ध शुद्ध किसी अवस्था में भगवान का नाम लो, कितनी बढ़िया बात। गीता कहती है सर्वेशु कालेषु मा मनुस्मर, सबसे मेरा स्मरण करो, मेरे को याद करो, कभी करो कोई करो मेरे को सब समय में याद करो, चलते फिरते उठते बैठते भगवान को याद रखो। न जाने किस समय प्राण चले जाए, तो हरदम भगवान का नाम लेते रहे तो हरदम समय में ही तो मौत आवेगी। दिन में आवे, रात में आवे, सुबह आवे, शाम आवे, 24 घंटों में आवे, 24 घंटा नाम ले रहे हैं। नींद आ जाए तो कोई परिवर्तन है नहीं, चेत नहीं है, परंतु नींद नहीं आवे तब तक नाम से लेता रहता है, तो नींद के समय भी उसका नाम नहीं छूटता। तो नाम हरदम लेते रहे तो जैसे बीमा बिक जाती है तो जोखिम नहीं रहती, कोई बात पूछ जाए तो बीमा बिक गई। ऐसे हरदम नाम लेने वाला के जीवन की बीमा हो गई, अब कल्याण में कोई संदेह नहीं। ये जमा कर राम 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 राम, मन से करो, जबान से करो, उपांशु करो, किसी तरह से कीर्तन करो, भगवान नाम का स्मरण किसी रीति से करो, होना चाहिए, निहाल हो जाओ। अभी कलयुग में विशेष इसकी महिमा है, कल विशेष निहाल हो पाओ जिस भगवान के नाम का जप करो, महाल उद्धार हो जाए। ये जो समय मिला है ये मन यही तनु कर फल विषय है भाई, इस मानव शरीर का फल संग्रह करना सुभोग नहीं है। सुख भोगना हो तो स्वर्ग में जाओ, दुख भोगना हो तो नरकों में जाओ, 84 लाख जूनी में जाओ, और सुख दोनों से ऊंचा उठना तो मनुष्य शरीर में आओ। ये मनुष्य शरीर तो पाप और पुण्य दोनों से, सुख और दुख दोनों से ऊंचा उठ आनंद में जाओ। जैसे यहाँ पर हमारे रात और दिन दो होते हैं, एक रात होती है दिन होता है, मगर सूर्य भगवान में वहाँ रात दिन दो नहीं होते, रात होती ही नहीं तो दिन कहते ही नहीं। राम सच्चिदानंद दिलेशा ना ता नहीं मोल लिवल मोल निशा लवलेश, लवलेश मात्र नहीं है। ऐसे भगवान के यहाँ आनंद आनंद है, दुख का नाम निशान नहीं है। वो महान आनंद हरेक भाई को हरेक बहन को प्राप्त हो सकता है। आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े लिखे हैं, आप परवाह न करें, नाम में लग जाए। इसका अर्थ ये नहीं कि आप पढ़ाई न करो, मेरा निषेध नहीं है। आप जैसे हैं वैसे राम 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 में लग जाओ। चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में संत हुए, उन्हें महाराज एक व्याकरण से मैंने देखी, व्याकरण हरिनामामृत व्याकरण, हरिनामामृत व्याकरण, व्याकरण में नाम भर दिया महाराज, संज्ञा ही भर दी संज्ञा ही, सब स्वर व्यंजन ने जितने कायदे ऐसे वृक्ष में बताए हैं। अब महाराज आश्चर्य होता है कितना व्याकरण पर उनका अधिकार है। जब भिक्षा मांगते जंगल में रहते बुद्ध में पुराणों की बातें ऐसी ऐसी साफ बताई है, कितना अध्ययन किया उन परमात्मा ने, व्याकरण शास्त्र पर अधिकार। ऐसी संस्कृत में व्याकरण लिखी है, सब संज्ञा लिखी है। वामन रसु के नाम वामन, वो संज्ञा की नदी संज्ञा की कहते हैं गोपी संज्ञा, ताप ले रहे वो आबंध कहते हैं उसमें राधा संज्ञा, राधा संज्ञा, गोपी संज्ञा, वामन संज्ञा, त्रिविक्रम संज्ञा, विराट रूप हुआ उसको पुरुष हर्षदीन पुरुष होता है ना पुरुष वो विराट रूप देखा जो ऐसी विलक्षण विद्या व्याकरण है विद्या पुण्य तो है ना, तो वामन गोपी राधा को निदामी रस्व नदी आप नुट बसाया तो रश्मि जी वामन और राधा और गोपी ऐसी व्याकरण बनाई ऐसे सूत्र बनाए इतने बढ़िया पास तो संतों ने कृपा की नाम जपने वाले कहे कि हम नाम जप करेंगे व्याकरण पढ़े तो व्याकरण पढ़ो नाम में ही व्याकरण बना दी व्याकरण राजी ने गोगो नाम भगवान का सा रह गया। कितनी कृपा करी संतों ने परंतु कोई पढ़ाई जितनी देखता नहीं हूं मैं मेरे को बड़ा भारी आश्चर्य देखा तो अष्टाध्यायी सब पूरी जैसे व्याकरण है महाराज पाणिनि व्याकरण ठीक ऐसे बड़ी शुद्ध व्याकरण बड़ी श्रेष्ठ व्याकरण सारस्वत चंद्रिका से भी तेज है आश्चर्य जीव गोस्वामी है जीव गोस्वामी बड़े नामी संत हुए इतने ही बड़े भारी विद्वान नामी विद्वान नाम में लगे रात दिन नाम में लगे नाम में ऐसी बिल्कुल बात अलौकिक बुद्धि हुई थी और भिक्षा मध उगरी ब्रजवासियों की मध उगरी से पार करने वाले जंगलों में रहने वाले कितने वृक्ष हुए तो ये समय अपना आपका हमारा जो मनुष्य का समय है अब जितना समय बचा है वो समय भगवान में लगे यार निहाल हो जाओगे हम जल पीना चाहते हैं और कुआ कोई सात हाथ नीचा हो सत्र हाथ नीचा हो सात हाथ नीचा पानी है उस पानी में रस्सी चली जाती है हाथ में इतनी सी रस्सी रह जाती है तो खेद ले तो लोटा भी आ जाता है डोरी भी आ जाती है जल मिल जाता है पीने से शांत हो जाती है ऐसे आज दिन आपके साठ घंटे साठ घड़ी आपकी सब कुएं में जा रही है उस रस्सी को थोड़ी सी भगवान में रख लू इतना उम्र आपकी चली गई थोड़ी सी उम्र बची हुई भगवान में लगा लू अच्छे अच्छे पुरुष यह काशी वास करते है भाई अब पता नहीं सही होगा चलो काशी रहो अच्छे अच्छे सज्जन आदमी यहाँ काशी वास करते है यहाँ के महाराजे की बात भी मैंने सुनी है ये उनकी है जमीन काशी राजा जी की बड़ा सुंदर मकान बना हुआ किसी बीमार ज्यादा हो जाते काशी राजा यहाँ आकर रहते अपने भाई प्राण छोड़ दो काशी जी में छोड़ेंगे काशी जी में बहुत से भाई सज्जन काशी निवास होते हमारी बहनों माताएं पूरी पूरी बड़ी बड़ी आदरणीय वे माताएं भी काशी जी में रहती है भाई शरीर जावे तो काशी जी में जावा कर जाओ काशी मनान मुक्ति रामानंद जी मन कर सुना की रामानुचारी महाराज ने यहाँ प्राण छोड़े वल्लभाचार्य ने यहाँ प्राण छोड़े करता हुए कृपाल जी महाराज ने यहाँ प्राण छोड़े अब उनकी क्या था बताओ सब कुछ था परंतु काशी सुभाष काशी में प्राण छोड़े काशी में भी केदारनाथ हो गए काशी में पापी को जन्म दिया जाता है वो भैरव यातना होती है बड़ी भयंकर नरकों से भी विशेष भयंकर वो भयंकर यातना देकर मुक्ति कर देते काशी में से मुक्ति हो जाती कितनी विलक्षण बात कितनी अलौकिक बात वो काशी क्षेत्र इसमें भगवान का नाम दिया जाए गीता का पाठ किया जाए भागवत का पाठ किया जाए रामायण का पाठ किया जाए कीर्तन किया जाए विश्वनाथ भगवान के दर्शन किए जाए कैसी मौज की बात हमारे महादेव भगवान के नाम उच्चारण करे निहाल ऐसा बड़ा सुंदर मौका बड़ा ही अवसर बढ़िया मिला है तो रात और दिन भगवान के नाम में लग जाओ तो नाम नाम अकारी बहुधा ने सर्वशक्ति स्मर ने कहा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इतनी कृपा भगवान की परंतु मेरा अनुराग नहीं हुआ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मेरा अनुराग नहीं हुआ जगन्नाथ जी महाराज के वहां दर्शनों को जाते थे दर्शन करते रोते नीचे इतना खड़ा भर गया था आंसू कहते मेरा अनुराग नहीं हनुमान जी भगवान की चरण प्रिय धनी आदमी है, लाखों करोड़ हो जाते धन तो कम है, फिर कमाओ फिर कमाओ तो वो तो दूसरा धन है आयु नष्ट करना है। संत महात्माओं के नाम इसके नाम बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर नाम लिया जैसा नाम दादू जैसा नाम था तैसा लिखाना है। अलावा विरा हंस रही मन मार मन में रहेगी नाम और दे तो और रूमर पर किया क्या नाम लिया रास्ते पर जैसा नाम था तैसा लिखाना जैसे नाम की महिमा है इतनी तत्व सामने लगे नाम क्या होंगे भाई ढेर भी बने कम ही रही। ये धन है असली असली साथ में चलने की पूंजी है ये राम नाम पूंजी पल्ले बांधे देना। तो अपना समय ये जा रहा है भाइयों बहनों कृपा करो मौत आ रही है। आप हम आकर बैठे उस समय जितनी उम्र थी अब उम्र उतनी नहीं है। मैं बोला अभी उस बोला जो उच्चारण किया सबसे नाम नाम अकारी श्लोक का उस समय में जितनी उम्र है उतनी उम्र नहीं है। उम्र बड़ी तेजी से जा रही है। एक ये अंगुली को आप देखो दो बार नहीं देख सकते इतनी ये बदल गई है निरंतर बदल रही है मौत में जा रही सब दुनिया अभाव में जा रही है। जैसे आपका बचपन अभाव में चला गया ऐसे सब समय अभाव में जा रहा है। बड़ी सावधानी से बचा हुआ सर भगवान में लगाओ। अब बच गया समय वो अग्रेजा डोरी हाथ में अभी प्राण चल रहे हैं अभी आंखें टिमटिमा रही है सम्मी लगे नया नये और नई केंद्र बेचती और लोग आगे मिस जाएगी कुछ कुछ नहीं इस वास्ते तूरम यथे जल्दी से जसन जसन को लग जाओ भगवान के नाम में सच्चे नारायण 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 नारायण।